कि दुनिया में इंसानों से पहले अल्लाह ने जिन्नातों के हवाले दुनिया को किया था। कितनी ताकतवर मखलूक। सुलेमान अलैहि सलाम ने एक मरतबा फरमाया इब्लीस के बारे में, जो कौम सबा की बहुत बड़ी रानी थी, क्वीन थी, उसके बारे में जब सुलेमान अलैहि सलाम को पता चला कि उसकी कौम सूरज की पूजा कर रही है, सुलेमान अलैहि सलाम ने जिन्नातों को बुलाया, सब हाजिर हुए। जिन्नातों में उनके बड़े बड़े देव भी मौजूद थे। जिन्नातों से सवाल किया सुलेमान ने कि कौमे सभा में कौन आदमी है जो वहां जावे और बिल्किस के पूरे तख्त को उठा करके मेरे पास ले। कितनी दूरी? इराक से यमन बाय एयर 1200 किलोमीटर बनती है हवाई पट्टी पर। एक जिन्नात ने कहा कि मैं लेकर आता। सुलेमान अलैहि सलाम ने पूछा कि कितना वक्त लगेगा लाने में। उसने कहा कि आप जो अपनी जगह पर बैठे हैं आप खड़े हो जाओ, खड़ा आप भी बैठ जाए, अब मैं बैठा हूं खड़ा भी, इसमें कितनी देर होगी, कितनी देर में मैं लेकर आता। कहां पर है? 1200 किलोमीटर दूर है और वो भी हवाई पट्टी। जमीनी रास्ते से तो कई किलोमीटर बनेंगे और कई घंटों में सफर तय होगा। सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया कि नहीं, वक्त ज्यादा है, बहुत वक्त है, हालांकि वक्त है। कहा के चलो भाई बताओ और कौन है जो इससे भी कम वक्त में ले आए। एक बहुत बड़ा देव खड़ा हुआ, उसका नाम था आसिफ, अलीफ उसके ऊपर खड़ा था, तो ये हमजा बनेगा, सौद और फा। आसिफ बिन गर्खिया नाम का एक बहुत बड़ा देव खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं ले आता। कहा कितनी देर में? तो उसने कहा पल झपक, पल झपक, हमारी आंख झपक जाती है, पता भी नहीं चलता, एक सेकंड से भी बहुत कम वक्त लगता है। पल झपक में मैं बिल्किस के तख्त को यहां लाकर रखूंगा। सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया ठीक है। अब ये ठीक है, इतने में सुलेमान देखते हैं कि तख्त सामने ही पड़ा हुआ है। बोलो तो ये जमीन कहां सिमट गई और वक्त कैसे चला पता ही नहीं चला। आज अमेरिका के साइंटिस्ट कहते हैं कि साइंस इसको मानती है। मुख्तसर वक्त में पल झपक में यमन से एक तख्त उठता है और इराक के मोसुल के अंदर आता है। साइंस ने यूं ही कहा कि ये हमारी समझ के बाहर है। साइंस ने इसको नाम दिया टाइम ट्रैवलिंग। टाइम ट्रैवलिंग का नाम दिया कि टाइम ट्रैवलिंग अगर हो तो पल झपक में यमन से मुसिर तक आ सकता है। कितनी ताकतवर मखलूक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को दुनिया से हटा दिया। इनको कहा कि तुम्हारी खिलाफत पूरी हो गई, अब यहां नई खिलाफत शुरू हो रही है इंसान। अल्लाह तआला ने आदम अलैहि सलाम को जन्नत से दुनिया में उतार दिया और जिन्नातों को कहा अब तुम कहां जाओगे, इनको कहां जाओ बरमुडा ट्रायंगल में जाओ और पैसिफिक महासागर में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, बड़े बड़े पहाड़ों पर चले जाओ। अब आबादियों के अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं, यानी इनकी खिलाफत पूरी हुई। इसका ये मतलब नहीं कि वो रहते नहीं, वो तो रहते हर जगह, हमारी इस मस्जिद के अंदर भी है, यहां भी रहते हैं, तो रहने में तो रह रहे हो, लेकिन उनकी खिलाफत पूरी हो गई। अल्लाह ने इनको नापास कर दिया और इंसानों को खिलाफत दे करके इनको भी कहा कि फयंजुर कैफ तअमलून, हम देखते हैं तुम भी क्या करते हो, हम भी देखते हैं। इतनी बड़ी मखलूक कि जो यमन से एक तख्त को उठा करके मोसिल के अंदर ला दे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे हक में ऐसा नहीं कहा कि इंसान अशरफुल मखलूकात और उसमें भी हमारे नबी की उम्मत। हमारा तो एक मामूली सदका भी अल्लाह ने ताकतवर था। कैसे? फरिश्तों ने अल्लाह ताला से सवाल किया, जिब्राइल ने, के मलाए करीम आपने हजारों की तादाद में मखलूक बनाई, तमाम मखलूक में सबसे ताकतवर कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया पहाड़ है। पहाड़ जब शुरू में जमीन का वजूद हुआ तो पूरी जमीन हिल रही थी, अनबैलेंस थी। अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े पहाड़ कीलों और मेघों की तरह डाल दिए कि जमीन साकिन हो, इसलिए कि हमारी जमीन दो हरकतें करती है, एक उसका रोटेशन है और एक उसका रिवॉल्यूशन है। हमारी जमीन गोल भी फिरती है पर आगे भी जाती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉलर गेंद डालता है तो गेंद की दो हरकत होती है, एक तो गोल फिरती है और एक बैट्समैन की तरफ जाती है, दो हरकत होती है। जमीन की भी दो हरकतें हैं, एक गोल फिरती है 24 घंटे में, रात दिन अल्लाह बनाता है जब वो गोल फिरती है। सूरज की नहीं, अल्लाह इससे तो रात और दिन पैदा करता है, और जो आगे की तरफ जाती है अल्लाह ताला इससे तीन मौसम पैदा करता है, चार मौसम पैदा करता है, गर्मी सर्दी बारिश, अल्लाह ये चार मौसमों को वजूद देता है। एक मौसम ऐसा भी आता है अभी शुरू हुआ, न गर्मी न ठंडी, ये मौसम अभी शुरू हो गया, चार मौसम रोए जमीन पर अल्लाह लाता। तो फरिश्तों ने कहा सबसे ताकतवर मखलूक कौन सी? अल्लाह ने फरमाया पहाड़। फरिश्तों ने कहा कि पहाड़ के मुकाबले में भी कोई ताकतवर कहां है? लोहा। लोहा बड़े से बड़े पहाड़ को काट देता है। हम देखते हैं कि आज जो सड़कें बनती हैं और बीच में पहाड़ आते हैं तो इनको कटर के जरिए तोड़ दिया जाता है। इतने ताकतवर पहाड़ भी लोहे के सामने बेबस नजर आते हैं। और अरब मुल्कों के अंदर आप देखो बड़ी बड़ी सुरंगें निकालते हैं, पूरे पहाड़ में से सुरंग निकालते हैं, वो किससे होता है? लोहे के जरिए होता है। फरिश्तों ने कहा कि लोहे से भी कोई ताकतवर मखलूक? अल्लाह ने फरमाया आग है। आग, लोहा चाहे जितना भी ताकतवर हो लेकिन अगर उसको सख्त तेज आग के अंदर डाला जाए तो लोहा भी पिघल जाता है। तो लोहे के मुकाबले में आग की ताकत ज्यादा हुई। फरिश्तों ने कहा आग के मुकाबले में कोई और ताकत कहां है? पानी। चाहे आग जितनी भी बेकाबू हो लेकिन अगर उस पर मुसलसल पानी डाला जाए तो फिर आग भी बुझ जाती है, बुझती है। फरिश्तों ने कहा कि पानी के मुकाबले में कौन सी ज्यादा ताकतवर चीज है? अल्लाह ने फरमाया हवा। हवा अगर तेज और तुरंत चले तो पानी के पूरे रुख को बदल देती। फिर फरिश्तों ने कहा कि हवा के मुकाबले में कोई ताकतवर मखलूक? अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले का छोटा सदका, ईमान वाले का छोटा सदका ये तमाम मखलूक से ज्यादा ताकतवर है। तो हमारे तो सदका को ताकतवर अल्लाह ने फरमाया, कहां जिन्ना को कहा कि वो ताकतवर? तो हमारे तो मामूली सदका को अल्लाह ने ताकतवर फरमाया। तो अल्लाह ने हमको ये शराफत अता फरमाई, अल्लाह ने हमको एक बुजुर्गी अता फरमाई। मेरे भाइयों, हर आदमी दुनिया में ये चाहता है कि मेरी जिंदगी सुकून के साथ गुजरे, किसी भी किस्म की कोई मुसीबत तकलीफ और बीमारी हमारे घर में ना आए, और लोगों की निगाह में मैं मौजस और इज्जतदार बन करके रहूं, ये हर एक की चाहत होगी। और इसके लिए वो अस्बाब को भी इख्तियार करता है, ये तीन चीजों को हासिल करने के लिए अस्बाब को भी इख्तियार करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अस्बाब को हासिल करने के बाद ये चीजें हासिल हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। नहीं पहुंचने देते। यहां तक के मासूम बच्चे जब उनकी माओ की छातियों का दूध पुष्ट हो गया, बेचारे तड़प तड़प करके रात के रोते थे, माओ को कुछ खाने की चीज नहीं मिलती थी, उनकी छातियों के अंदर दूध भी पुष्ट हो गया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि रात के अंधेरे में मुझे जोर की पेशाब लगी, मैं पेशाब करने गया, अंधेरा था, दिख नहीं रहा, तो मैंने जैसे पेशाब करना शुरू किया तो मुझे आवाज आई, जैसे दरख्त के खुश्क पत्ते हो, उन पत्तों के ऊपर अगर आप पेशाब करो या पानी डालो या कोई और चीज डालो तो आवाज आएगी। तो जैसे मुझको आवाज महसूस हुई तो मैंने अपने हाथ से टटोला नीचे कि कौन सी चीज है, तो फरमाते मेरे हाथ में चमड़ा आया, चमड़े का टुकड़ा आया। अब मेरी पेशाब तो उसी पर गिरी थी, मैंने उस चमड़े को उठाया और मेरे साथ जो पानी था उसी पानी से मैंने उस चमड़े को धो दिया। धोने के बाद जब मैं वापस आया मैंने देखा कि ये तो चमड़े का टुकड़ा है, तो मैंने पानी के अंदर उसको भिगो दिया। पूरी रात वो पानी के अंदर रहा, सुबह उठ करके मैंने वही चमड़ा खा लिया और पानी पी लिया। छह दिन से मेरे पेट के अंदर एक खजूर का टुकड़ा नहीं गया था सिवाय पानी, पानी के सिवा मेरे पेट के अंदर कोई चीज नहीं गई थी। मैंने ये पड़ा हुआ चमड़ा इसको भिगोया और भिगो करके जब वो तर हो गया, थोड़ा नरम हो गया, तो मैंने चबा करके पेट में उतार दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सहूलतें हमें अता फरमाई। आज का जो गरीब है गरीब, अरे गरीब तो क्या, हमारे दर पर जो सवाल ही आता है सवाल करने के लिए, उसको जो रोटी मिलती है वो रोमन एम्पायर के अंदर भी नहीं पकती थी और पर्शियन एम्पायर के अंदर भी नहीं पकती, किसरा के दरबार में भी ऐसी रोटी नहीं खाते थे जैसी रोटी आज हम खा रहे, कैसर के दरबार के अंदर भी ऐसी रोटी नहीं पकती थी जो आज हमारा गरीब से गरीब आदमी खा रहा। अल्लाह ने इतनी सहूलतें अता फरमाई, असबाब के अंदर अल्लाह ताला ने इसको नहीं रखा, असबाब से नहीं जोड़ा। देखो दुनिया दारुल असबाब है, या असबाब को भूल नहीं सकते। हजरत उमर के जमाने में एक जमात मस्जिद के अंदर बैठी हुई थी और बैठ करके जोर जोर से वो विर्द पढ़ रहे थे। बाहर तशरीफ लाए, पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो आपके पास में एक आदमी खड़ा था, उसने कहा कि पता नहीं कौन लोग हैं। उमर ने कहा कि तहकीक करो, मस्जिद के अंदर कोने के अंदर बैठे हुए थे चार पांच लोग, तहकीक करने के लिए एक आदमी उनके पास, पूछा भाई तुम कौन लोग हो। हजरत उमर बाहर खड़े, पूछा है तुम्हारे बारे में, उन्होंने कहा कि नहनु मुतवक्किलून, हम भरोसा करने वाले लोग हैं अल्लाह पर, हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग। वो आदमी बाहर गया, उमर ने पूछा कि कौन है, कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन हम मुतवक्किलून बिल्लाह, वो अल्लाह पर भरोसा करने वाले। हजरत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ, मुतवक्किलों को बुलाओ मेरे पास। तो वो आए, कहा कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा। हजरत उमर बुला रहे बाहर गए तो हजरत उमर ने कहा अंतुम मुतवक्किलून बिल्लाह, तो अल्लाह पर बड़े भरोसा करने वाले कौन आ गए, क्या भरोसा करते हो। तो कहा मस्जिद के अंदर आए और बैठे हैं, बस अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं कि अल्लाह हमको खिलाएगा। तो आपने क्या फरमाया, तुम भरोसा करने वाले नहीं हो, तुम भिखारी हो। और कोड़ा बताए, इनको कोड़ा निकाला और बताया कि देखो ये कोड़ा, आज के बाद कभी भी मैं तुमको मस्जिद नबवी के अंदर इस तरह बैठा हुआ ना देखूं, हाथ पैर हिलाने नहीं है तुमको, भरोसा किस चीज का नाम रख दिया है तुमने। बाजार जाओ, मजदूरी करो, हलाल कमाई करो और उन पैसों के जरिए अपने अहलो अयाल को खिलाओ और खुद भी खाओ, ये असल भरोसा है। मस्जिद के अंदर बैठ करके कोई आदमी आए और फिर उसके सामने तुम हाथ फैला दो तो इसको भरोसा समझ रखा है। असबाब का दर्जा है, असबाब का दर्जा है। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब से जोड़ा है। बीमार हुए दवाई करनी सुन्नत, इलाज करना सुन्नत, घर पे जाना है तो पैर हिलाने पड़ेंगे, चल के जाना पड़ेगा या सवार होके जाना पड़ेगा, या बैठ करके इरादा कर लिया मैं घर जाऊं तो वो नहीं जाएगा, वहीं पर बैठा रहेगा। तो आदमी इन तीन चीजों को हासिल करने के लिए रात दिन थकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके साथ ये तीन चीजों को नहीं जोड़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार मुल्क कौन है? शायद आप में से बहुत से जानते होंगे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसा मुल्क है, पूरे मुल्क में कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं, सब मालदार। लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा मुल्क है कि जहां सुसाइड करना, खुदकशी करना कानूनी हक है, और हक मिलता है हर एक को। अगर किसी आदमी की जिंदगी एकदम अजीरन बन गई, वो बेकरार बेचैन हो गया, वो वहां के चीफ जस्टिस जो हायर अथॉरिटी होगी उसके पास वो इजाजत मांगेगा तो उसको इजाजत मिल जाएगी। वो सरकारी डॉक्टर टीम होती है उनके पास आएगा और वो टीका लगाएंगे और उसको मौत के लिए छोड़ा देगा। जब इतना मालदार मुल्क है और इतनी ज्यादा सहूलतें हैं तो फिर ये खुदकशी करने की क्या जरूरत है? क्यों खुदकशी कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचाना, अपना खुदा असबाब को बना लिया और असबाब को खुदाई का दर्जा दे दिया, और सब कुछ उन्होंने यही समझा कि अगर ये चीज है तो हम यहां कामयाब हैं, और अगर ये नहीं है तो अपना। मेरे भाइयों, हमने तो हमारी जिम्मेदारी पूरी, ये उम्मत असल में उस्ताद बनकर आई थी, लेकिन जब से हमने हमारी जिम्मेदारी को छोड़ दिया हम डिफेंस में आ गए। ऐसा डिफेंस तो आपको तारीख में नहीं मिलेगा जिस डिफेंस के अंदर हम इस दौर के अंदर चल रहे हैं। हमारा हाथ हमेशा ऊपर रहा, आठ सदियों तक इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी की, आठ सदियों तक हमने स्पेन के अंदर हुकूमत की। स्पेन के अंदर तो मस्जिद मदरसे का वजूद नहीं। एक जमाना आया कि अल्लाह बोलना भी वहां बहुत बड़ा जुर्म समझा गया। जिस जमीन के ऊपर 800 साल तक मुसलमान की हुक्मरानी रही हो और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 800 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही, लेकिन फिर भी हम डिफेंस में आ गए, बचाव में आ गए। इसलिए हुआ कि मेरे भाइयों, हमने अपनी जिम्मेदारी खो दी, अल्लाह के नबी के तौर तरीक को खो दिया। दिल्ली की जामे मस्जिद आप में से अक्सर ने देखी होगी, अंग्रेजों का जमाना था, एक फकीर सीढ़ी पर बैठा हुआ, एक अंग्रेज आया जामे मस्जिद को देखने के लिए, जामे मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा था। फकीर ने हाथ फैला करके भीख मांगी, उसने अपना पर्स निकाला, पॉकेट निकाल करके उसमें से पैसे निकाले, उसको दे दिए, और वो अपने जेब के अंदर रखने जा रहा था, उसके साथ दूसरे भी थे अंग्रेज, इतने में उसका पॉकेट नीचे गिर गया, वो समझा जेब में गया और वो अपने साथियों को लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। फकीर की नजर पड़ी तो फकीर ने अपने हाथ में ले लिया, बस वहीं पर बैठा था, वो इंतजार में था कि अब ये शायद मस्जिद को देखने गया होगा, वापस आएगा तो मैं उसकी चीज अमानत को वापस करूंगा। लेकिन वो तो चूंकि दरवाजे ज्यादा है, आपने देखी होगी मस्जिद, तो किसी और दरवाजे से अपने साथियों को लेकर चला गया। अब ये इंतजार कर रहा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, वो आया ही नहीं। हालांकि बहुत मिकदार में रकम थी उसके पॉकेट के अंदर, उसने इधर उधर तलाश की भी किया, लेकिन उसको अंग्रेज नहीं मिला। एक साल या डेढ़ साल के बाद जब उसी, उसका तो रोजाना का धंधा था भीख मांगना, उसी सीट पर बैठा हुआ था और वो अंग्रेज अपनी टीम को लेकर आया, वो गौर से देख रहा था, उसने पहचान लिया कि वही आदमी है कि जिसकी पॉकेट गिर गई थी पर आज तक मेरे घर में बतौर अमानत मौजूद है। उसने खड़ा किया कि भाई दो मिनट के लिए आप खड़े रहोगे, आपकी अमानत पहुंचा। वो अंग्रेज को भूल गया, उसको तो मालूम भी नहीं था। और ये दौड़ता हुआ अपने किसी रिश्तेदार के पास गया और वो फौरन उसका पॉकेट लेकर वहीं पर आ गया और कहा कि भाई आपको पता नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, आज से कोई एक साल या डेढ़ साल पहले मैं इसी मकाम पर बैठा हुआ था और किसी जगह से तुम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे, आपने मेरी मदद भी की थी लेकिन आपकी ये अमानत गिर गई थी, मैंने उसको संभाल के रखा है और आज आप गिर लो, आपके पैसे कम तो नहीं। वो अपनी पॉकेट को देखता, फकीर को देखता, फकीर को देखता कि फटे पुराने कपड़े, उसका पेट कमर से लगा हुआ है, एकदम खस्ता हाल आदमी है कि अगर वो चाहता तो इन पैसों के जरिए अपनी हालत को दुरुस्त कर सकता और अगर चाहता तो वो पॉकेट को न बताता, लेकिन अमानतदारी के साथ मुझे वापस कर रहा है आज। तो उसको पूछा कि भाई तेरे दिल में बात आई थी कि मैं इसको खा जाऊं या न दूं, ऐसा आया था तेरे दिल में? आया हुआ तो तुझको किस चीज ने रोका, ये काम करने से किस चीज ने रोका? वो कहने लगा कि मेरे दिल के अंदर एक बात आ गई कि कयामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम और मेरा नबी आमने सामने होंगे, दोनों की मुलाकात होगी, ये ईसाई आदमी है, मैं मुसलमान हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नबी ईसा मेरे नबी को कहे कि तुम्हारे एक उम्मती ने मेरे उम्मत में से आदमी के पैसे चुरा लिए थे, वापस नहीं लिए थे, उसको मिली हुई चीज थी लेकिन वो खा गया था, तो मेरे नबी को कहीं सर झुकाना न पड़े, इसलिए इस बात ने मुझको मारा कि मैं अपने नबी को कयामत के दिन शर्मिंदगी की हालत में नहीं देख सकता, तो मैंने आपकी चीज वापस कर दी। फकीरों की हालत थी हमारी, फकीरों की हालत, फकीर है और उसके अंदर ये अमानत थी, ये जिम्मेदारी हम भूल गए। इस मुल्क के अंदर जो हमारी हालत इस वक्त है, आप तो पढ़े लिखे लोग हो और माशाल्लाह तजर्बाकार लोग हो, मैं आपको पहचानता हूं अच्छी तरह, तो ये जिम्मेदारी जब हमने कोई तो हम डिफेंस में आए। आज हमारा लड़का देखो यहूद उधर हमारे गोधरा के अंदर यहूद नसारा जैसे बाल कटवाते, इधर सब टकला होता है और बीच में बड़े बड़े बाल होते हैं, जवान नसल के जो उम्मत का बोझ अपने कांधों पर उठा सकते हैं, ऐसे लड़के फॉरेक्स दवा जो कफ की दवा होती है और जिसमें ड्रग्स होता है उसके आदि बन जाए। याद रखना चाहिए जिस कौम की नस्ल किस तरह आवारा बनती है, अल्लाह तबारक व तआला इनको इज्जत से जीने का हक नहीं देता, इनका इज्जत से जीने का हक चला जाता है। एक मोमिन मुसलमान अपनी हराम कमाई करते हुए यूं नहीं सोचता कि मैं अगर ये दवा बेच रहा हूं तो मेरे तो पैसे आ जाएंगे लेकिन उम्मत के कितने नौजवानों की जिंदगियों को मैं बर्बाद कर दूंगा। बेच रहे हैं लोग, बेचने वाला मुसलमान, खरीदने वाला मुसलमान, उम्मत के कितने ऐसे बच्चों को जाये कर दिए कि जिनके ऊपर उम्मत की अगर जिम्मेदारी डाली जाए तो अदा कर सकते हैं। एक सहाबी हबशी सहाबी थे, हमारे नबी जब बाल तोड़ते बाल, तो आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा सीरत में कि हमारे नबी के बीच में मांग नहीं करते, बीच में आप जबरदस्ती नहीं निकाल देते, सेट नहीं कर देते, आप तंगी फरमाते, अगर मांग निकल आई तो निकल आई, बाकी अपने हालत पर छोड़ देते, बाकी अक्सर आपकी मांग बीच से निकलती है। हबशी लोगों को आपने देखा है, हबशी लोग उनके बाल कैसे चारे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, वो अगर कंघी चलावे तो भी उनके बाल ठीक नहीं हो सकते। एक हबशी सहाबी अल्लाह के नबी को देखते कि मेरा नबी जब अमामा उतारता है, पगड़ी उतारता है, और मेरा नबी जब कंघी करता है तो मेरे नबी के सर मुबारक के अंदर एक मांग निकलती है, उससे सुन्नत अदा ही नहीं हो पाती। एक दिन बाजार से गुजरे तो देखा कि लोहार की पट्टी पर एक लोहे का टुकड़ा लाल धक्कर हो रहा, तो उन्होंने उसको पकड़ के अपने सर के बीच में फिरा दिया। अब आप अंदाजा लगाओ कितना गर्म के जो लाल अंगारे की तरह था, तो बाल भी जल गए और थाल भी जल गई। यहां तक के उनको बीच में हमेशा वो पस निकलता था, परू निकलता था, पानी निकलता था। लेकिन किसी तरह इलाज हुआ, अल्लाह ताला ने उनके जख्म को ठीक कर दिया, लेकिन ये हमेशा के लिए उनकी मांग निकल गई, बीच में लकीर पड़ गई। तो सहाबा इकराम जब उनको देखते कहते हैं, तुम्हारी तो बहुत अच्छी मांग निकल आई, कहा कि मुझे जिंदगी के अंदर मेरे नबी की एक सुन्नत पर अमल करना था, लेकिन हमारे चूंकि बाल ही ऐसे हबशी लोगों के, तो मेरे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर सकता था, तो मैंने ये काम किया, अल्लाह ताला ने मेरे नबी की तरह मांग निकाल। इससे इज्जतें मिलती है, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी। मेरे भाई और हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास बहुत कम हो रहा है। अभी मौलाना इब्राहिम साहब ने उसको बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बस्ती हमारी बिरादरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, और अल्लाह ने हमारी फ्रांसी बिरादरी को बड़ी सलाहियतों से नवाजा। ये तो हमारी बदकिस्मती है, मेरी और आपकी बदकिस्मती है कि बासलाहियत लोगों से काम लेते हमको नहीं आता। दुनिया की कौमें आगे क्यों निकल गई? दुनिया की कौमें इसलिए आगे निकल गई कि उन्होंने अपनी समाज के बासलाहियत लोगों से उनकी सलाहियत को इस्तेमाल करवाया और उनकी सलाहियतों को अमल में ला करके उनकी सलाहियतों से अपने समाज को आगे। मैं कई अलग अलग कौमों के अंदर जाता हूं, यहां तक कि कभी आरएसएस वाले भी मुझको बुलाते हैं, उनको जो एतराज होते हैं कुरान को लेकर हदीस को लेकर। कई बार मेरा जाना हुआ, हर जगह एक शिकायत होती कि तुम्हारी समाज कौम के अंदर कितने टैलेंट लोग होते हैं, लेकिन कभी भी उनकी कदर नहीं की जाती, उनकी सलाहियतों से फायदा नहीं लिया जाता, इसलिए पढ़ दिया। तो हमारे वहां मुद्रा शहर में आपको मालूम है कि अलहमदुल्ला अभी तो शूरा की भी मेहनत हो, शूरा की, कि हमारे कितने ऐसे मसाइल हैं कि जो अच्छे लोग जमा होंगे। देखो ये हमारी नस्ल है जवान, अभी इनके सामने आप जैसों की जिंदगी है, आपका हाथ उनके सर पर है। एक जमाना आएगा कि आप जैसे बड़े वडील और सज्जनों की सलाहियत उनको नसीब नहीं होगी, दुनिया से आप चले जाओगे और उनको आपके तजर्बा का कोई फायदा नहीं होगा। हालात बड़े संगीन आ रहे हैं आगे, हम सब जानते हैं, इशारों में समझ जाने वाले लोग हुआ। ये देखते हुए मेरे भाइयों, अरे मुसलमानों के अंदर जमात ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जो हमारे ऐसे मसाइल हैं कि जिन मसाइल को लेकर के हम पीछे जा रहे हैं, एक जमात बासलाहियत लोगों की हो जिनमें आप जैसे लोग हो, उम्र रसीदा लोग हो, पढ़े लिखे हो। हमको वेल लर्नेड और वेल एजुकेटेड लोगों की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ऐसे लोगों की सलाहियत तो उलमाई दीन है हमारे पास अच्छे, उनकी सलाहियतों को हम लें और ले करके जो माशरे के अंदर जो बिगाड़ आ रहा है, बिगाड़। देखो फिर भी यहाँ तो बहुत अल्लाह का करम है, बहुत एहसान है कि जो हम वहां जवानों के अंदर गुनाह कबीरा देख रहे हैं, अल्लाह ने हमारी इस बस्ती को पाक रखा।